नमस्कार भारत, तारीख 4 अगस्त, दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पास हो ही गया जीएसटी बिल राज्यसभा में। अब लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण?
राज्यों को शुरुआत में बहुत दिक्कतें आएंगी। एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि भारत में जो लोग जीएसटी को आर्थिक सुधारों के सबसे बड़े सूत्र के रूप में देख रहे हैं, उनका मोहभंग हो सकता है।
अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए मिलने वाली राशि में से 30 करोड़ डॉलर पर रोक लगाई। बिहार के बोधगया में होटल एसोसिएशन के लोग परेशान हैं, वजह है यहां के विदेशी मठ।
इन्होंने आज की तारीख में 300 कमरे 400 कमरे इस तरह से इन्होंने बना रखे हैं और बिल्कुल ही लग्जरियस, और ये एकोमोडेशन देता है बिल्कुल हम लोग होटलों की तरह।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। राज्यसभा ने जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर बिल के लिए लाए गए संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया है। बिल के समर्थन में 197 वोट पड़े, जबकि बिल का विरोध कर रही तमिलनाडु की पार्टी एआईएडीएमके के 35 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और सदन का बहिष्कार किया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता हरक सिंह रावत पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 214 कैदियों की सजा माफ कर दी है। इसके साथ ही ओबामा ने अब तक कुल 562 लोगों की सजा माफ की है। जिन लोगों को जेल से रिहा किया जाएगा उनमें 67 लोग ऐसे हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि सभी कैदियों को तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा, कुछ की सजा कम कर दी जाएगी जबकि अन्य को पहले नशा मुक्ति कार्यक्रम पूरा करना होगा। व्हाइट हाउस के अनुसार पिछले 100 सालों में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने एक दिन में इतने अधिक लोगों की सजा माफ की है। कनाडा ने देश में मूल आदिवासी महिलाओं और लड़कियों की हत्या और उनके गायब होने के मामलों की जांच शुरू करने का फैसला किया है। कनाडा को इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। देश के आदिवासी मामलों की मंत्री कैरोलीन बेनेट ने इस जांच को ऐतिहासिक बताया और इस हिंसा की जड़ तक पहुंचने पर जोर दिया है, जिसमें नस्लीय हिंसा, लैंगिक भेदभाव और उपनिवेशवाद का लंबा प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा,
The National Inquiry is an important step in our journey on reconciliation.
कनाडा के मूल आदिवासी लोगों के साथ जुड़ने के सफर में यह राष्ट्रीय जांच एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 साल पहले कनाडा की पुलिस ने कहा था कि साल 1980 और 2012 के बीच आदिवासी महिलाओं और लड़कियों की हत्या के 1000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। यह जांच सितंबर में शुरू होगी और गवाहों को बुलाया जाएगा। साल 2018 के आखिर में हम इस पर एक रिपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। ये थी कनाडा की आदिवासी मामलों की मंत्री कैरोलीन बेनेट। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। 3 महीनों तक ब्राजील के शहरों से होते हुए ओलंपिक मशाल रियो डी जेनेरियो पहुंच गई है। रियो के मेयर एडुआर्डो पेस ने ओलंपिक मशाल का स्वागत किया। इस अवसर पर वहां लोगों ने भी मशाल का स्वागत किया और जल्द ही ओलंपिक खेलों के शुरू होने की खुशी मनाई। लेकिन शहर में कई जगहों पर इसके विरोध में छिटपुट प्रदर्शन हुए। लोग ओलंपिक खेलों के आयोजन में अधिक खर्च के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। रूसी सेना ने कहा है कि उन्होंने अमरीका को बताया है कि उनका मानना है कि मंगलवार को सीरिया के एलेपो शहर में विद्रोहियों ने हमले में जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल किया था। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स का कहना है कि इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। बीती रात भारत की संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा ने ऐतिहासिक जीएसटी बिल पारित कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का ये बिल जब कानून बनकर लागू होगा तो पूरे देश में सामान और सेवा पर लगने वाले कर की दरें एक जैसी हो जाएंगी। लोकसभा से पारित होने के बावजूद राज्यसभा से इस विधेयक को पारित करवाना मोदी सरकार के लिए टेढ़ी खीर था। बिल के पक्ष में राजनीतिक दलों को जुटाने के लिए सरकार को कई मोर्चों पर काम करना पड़ा। जीएसटी के पास होने की कहानी सुनिए निखिल रंजन से।
नाउ रिजल्ट ऑफ द डिविजन, आइज 197, नोस निल, द मोशन इज अडॉप्टेड।
राज्यसभा में इस आवाज को सुनने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत लंबा इंतजार किया। हालांकि उससे पहले पूरे 7 घंटे इस पर बहस हुई और सभी प्रमुख दल के सदस्यों ने इस पर रजामंद होने के साथ ही सुधार की मांग भी रखी। AIADMK के सांसद तो विरोध में सदन से बाहर भी चले गए। सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की आपत्तियां सबसे ज्यादा थीं और पार्टी की तरफ से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार को याद दिलाया कि उन्होंने अब माना है कि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी।
It has of course taken us 11 years to arrive at this point. So let me make it very clear.
सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस ने इसका समर्थन करने की पहले ही सहमति दे दी थी, लेकिन अपने शासन के दौरान इसे पास न करा पाने की उनकी पीड़ा का एहसास नेताओं के भाषण में बार बार मिलता रहा। आनंद शर्मा ने तो यहाँ तक कहा कि अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री खुद सदन में आकर मान लेते कि GST बिल का विरोध राजनीतिक था।
अच्छा होता प्रधानमंत्री भी होते, क्योंकि काफी उन्होंने कहा कि जो इसकी मदद नहीं कर रहे भी हाल में वो आत्महत्या कर रहे हैं, राष्ट्र का अहित कर रहे हैं, तो शायद ये बातें अब खत्म हो जाती। और जो UPA की सरकार ने, जो कांग्रेस ने, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे वित्त मंत्रियों ने जो बात सामने रखी थी वो राष्ट्र के हित में थी और जो कहा गया उसके लिए खेद भी व्यक्त होता है।
संविधान संशोधन बिल पास होने के बाद राज्यों की विधानसभा में भी ये बिल पास होगा और तब असल GST बिल संसद में पेश होगा। कांग्रेस और दूसरे दलों ने बिल को समर्थन जरूर दिया है, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ और इस आश्वासन पर कि असल बिल पर भी राज्यसभा में चर्चा होगी। प्रमुख विरोध टैक्स की दरों, राजस्व का केंद्र और राज्य में बंटवारा, नुकसान होने पर राज्यों को मुआवजा और आगे इसे लागू करने के तौर तरीकों को लेकर था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली को यह भी बताना पड़ा कि विपक्ष में रहते हुए जिस बिल का BJP ने विरोध किया उसी को पास कराने के लिए अब एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा रही है। विपक्षी दल ये भी चाहते थे कि असल GST बिल मनी बिल की तरह पेश न किया जाए, क्योंकि इसमें राज्यसभा के पास मतदान का अधिकार नहीं होता।
आज बिल के ऊपर काउंसिल में चर्चा नहीं हुई, GST काउंसिल में पहला ड्राफ्ट नहीं मालूम, उसका कंटेंट नहीं मालूम, वो क्या होगा उसके संबंध में मैं आज आश्वासन दे दूं, कोई हमारा इरादा नहीं है कि उस बिल को आपसे बिना चर्चा किए हुए हम इस प्रकार से पारित करें, हम चाहेंगे लेकिन एक बार बिल का ड्राफ्ट बनने दीजिए।
अप्रत्यक्ष करों के मामले में ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है। अगले साल इसके लागू हो जाने के बाद पूरे देश में सामान और सेवा पर लगने वाले कर की दर एक समान होगी। नतीजा ये होगा कि कागजी कार्रवाई कम होगी, टैक्स का गुणा भाग आसान होगा। वित्त मंत्री ने ये भरोसा भी दिया है कि इसके नतीजे में टैक्स की दर मौजूदा दर से कम होगी।
आज अगर 6 स्टेजेस पे टैक्स लगता है तो हर स्टेज पे जो पहले टैक्स दिया गया है उस टैक्स कंपोनेंट पे भी टैक्स लगता है, सो GST में देयर विल बी नो टैक्स ऑन टैक्स, तो वो उसकी दर कम आएगी।
जानकारों की राय है कि GST लागू होने के बाद कार, कार की बैटरी, मोटरसाइकिल, पेंट, सीमेंट और पंखा, लाइट, वाटर हीटर, कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतें कम होंगी। हालांकि मोबाइल फोन की कॉलिंग रेट, कपड़े और ब्रांडेड गहने और सिगरेट जैसी चीजें महंगी होंगी। केंद्र की NDA सरकार पिछले 18 महीने से इस बिल को पास कराने में लगी थी और उसकी बहुत सी आशाएं इसी बिल पर टिकी हैं। ऐतिहासिक बिल उसकी उम्मीदों को कितना पूरा करता है इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।
भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए काफी मेहनत मशक्कत की। सत्ता में 2 साल से ज्यादा रहने के बावजूद मोदी सरकार पर बहुत कुछ ना बदल पाने का आरोप लगता रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी इन आलोचनाओं का जवाब GST से देगी? हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक उर्मिलेश से यही सवाल पूछा।
मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है वो रिफॉर्म्स को आगे ले जाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रही है और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको और पूरे बड़े देश जो मुल्क हैं उनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि इंडिया रिफॉर्म्स की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें GST को लागू करने के बाद मार्केट है पूरी दुनिया में और खासकर जो बड़े जो कारपोरेट घराने हैं, जो पूंजी जहाँ से आनी है उनको वो आश्वस्त करेंगे कि भारत में व्यापार करना ज्यादा पहले से इजी है और साथ साथ वो घरेलू स्तर पर भी जाना चाहेंगे कि इससे सबको फायदा है।
कई मोर्चों पर बीजेपी की लगातार नाकाम रहने के लिए आलोचना होती है और ये भी कहा जाता है कि जो उन्होंने वादा किया था वो उसको डिलीवर नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि इस मामले में बीजेपी को जीएसटी से कोई बड़ी राहत मिलने जा रही है?
जितना मैं समझ पाता हूँ जीएसटी को कि यह एक साझा राष्ट्रीय बाजार की जो धारणा है उसी धारणा को मूर्त करने वाला एक टैक्स मॉडल है। उस कंसेप्ट को अगर मैं देखता हूं कि भारत राज्यों का एक संघ है, एक फेडरल स्ट्रक्चर इसका है, तो मैं जीएसटी की धारणा को उसके ठीक उलट पाता हूं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको जनता के स्तर पर, जमीनी स्तर पर, आम लोगों में इसको वह लोकप्रियता हासिल कराई जा सकेगी जो एक जमाने में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण से या प्रीपर्स की समाप्ति से आम जनता को जो राहत मिली है। ये बुनियादी तौर पर मार्केट को उनको राहत देगा और राज्यों को शुरुआत में बहुत दिक्कतें आएंगी। मैं नहीं जानता कि इसको कैसे हल किया जाएगा, लेकिन मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि भारत में जो लोग जीएसटी को आर्थिक सुधारों के सबसे बड़े सूत्र के रूप में देख रहे हैं उनका मोहभंग हो सकता है।
आपको क्या लगता है कि राज्य और केंद्र के संबंधों पर भी कोई असर पड़ सकता है या उनके जो रोजमर्रा के जो कामकाज के तौर तरीके हैं उस पर भी कोई इसका असर हो सकता है?
शुरू में दिक्कतें आएंगी और ये केंद्र ने भी स्वीकार किया है, इसीलिए उन्होंने राहत के लिए पैकेज तैयार किया है। और देखा जाए तो इतने दिनों से जो इवॉल्व करने की प्रोसेस चल रही थी, एक सहमति बनाने की, कांग्रेस लेड यूपीए ने की थी, फिर बीजेपी ने की, तो बीजेपी उस वक्त नाराज थी। गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी, वो स्वयं इसका विरोध कर रहे थे खुलकर। लेकिन अभी तमिलनाडु को छोड़कर मैं समझता हूँ कि ज्यादातर राज्य मान गए हैं, तो मैं समझता हूँ कंसेंसस काफी हद तक इस पर बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल यह है कि इसके बाद जो पेच पैदा होंगे उसको हल करने में ये सरकार कैसे पेश आती है, इस पर निर्भर करता है।
जीएसटी विधेयक का विश्लेषण कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक उर्मिलेश।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए दी जाने वाली राशि में से 30 करोड़ डॉलर पर रोक लगाने का ऐलान किया है। क्या है ये पूरा मामला जानने के लिए सीधा चलते हैं वॉशिंगटन ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, बताएं कि किस तरह से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ये घोषणा की।
देखें, पहली बात ये है कि हक्कानी नेटवर्क जो चरमपंथी गुट है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने के आरोप में ये मदद रोकी गई है। पेंटागन के प्रवक्ता के अनुसार रक्षा मंत्री एशले कार्टर ने वो सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया जिससे ये राशि पाकिस्तान को मिल पाती। कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत 2002 से ही अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान जो मदद करता है उसकी एक तरह से आर्थिक भरपाई करता रहा है और साल 2015 में इस बजट के तहत पाकिस्तान के लिए $1 अरब की राशि तय हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने इसे जारी करने से पहले एक शर्त रखी थी कि इसमें से $30 करोड़ तभी जारी किए जाए जब रक्षा मंत्री हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई से संतुष्ट हो और उसका सर्टिफिकेट दे। तो वो सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं दिया है और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तरी वजीरिस्तान में कई चरमपंथी गुटों के खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई है लेकिन हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान दोनों ही पाकिस्तान के कई इलाकों में अभी भी सक्रिय हैं। बाकी जो $70 करोड़ है वो पहले ही मिल चुके हैं लेकिन माना जा रहा है कि इस फैसले से दोनों देशों के संबंधों में तनाव और बढ़ेगा और ये पहली बार है जब ओबामा प्रशासन ने हक्कानी नेटवर्क की वजह से पाकिस्तानी फौज को दी जाने वाली मदद पर रोक लगाई है।
ब्रिजेश, पाकिस्तान की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया है, क्या कोई रिएक्शन है?
जी हाँ, वॉशिंगटन स्थित जो पाकिस्तानी दूतावास है उसने बीबीसी को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राशि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान की मदद करती है और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को इस कार्रवाई से फायदा होता है। और उनका कहना था कि पाकिस्तान ने उत्तरी वजीरिस्तान में जरबे अज़ के नाम से एक अहम कार्रवाई की है और चरमपंथियों के ठिकानों को तहस नहस किया है और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। लेकिन इस जवाब में हक्कानी नेटवर्क का कहीं जिक्र नहीं किया गया है और जाहिर है काफी ये कूटनीतिक भाषा है,
बोल भाषा
है। पाकिस्तान पहले से ये कहता रहा है कि वो सभी चरमपंथी गुटों को निशाना बना रहा है लेकिन जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि एक बड़ा झटका है पाकिस्तानी फौज के लिए, क्योंकि एक बड़ी राशि है जिसे पाकिस्तान की फौज 2002 से ही अपने बजट का हिस्सा मानकर चलती आई है।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। तो इस समय खबर ये है कि 30 करोड़ डॉलर पर रोक लगाने का अमेरिका ने घोषणा की है। चर्चा पाकिस्तान की चल रही है तो चर्चा पाकिस्तान की ही करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सार्क देशों के मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान में हैं। कल इस्लामाबाद पहुँचने पर उन्हें कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच होटल ले जाया गया। जब राजनाथ सिंह पाकिस्तान पहुंचे तो उनका विरोध करने के लिए इस्लामाबाद में प्रदर्शन हुए।
राजनाथ सालम परिंदा के जिसके मुंह पे मुसलमानों का खून लगा हुआ है।
मकसद ये है कि ऑब्वियसली आपको भी पता है कि जो कश्मीर में हालात हैं आजकल, कुछ लाखों में लोग शहीद हो रहे हैं। कल मेरे जो भाई हैं इधर जमात दावा के, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई है, उसमें 6-7 साल के बच्चों की आंखें ज़ाया, उनकी आंखें ज़ाया। उसे देख के हम लोगों का जो है ना जो जज्बा है वो बढ़ रहा है।
मैं FSC कर ली है, मैं भी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन मैं तो ये कश्मीर की वजह से आया था यहाँ पे कि जैसे उधर जुल्म हो रहा है।
प्रदर्शनकारी कश्मीर में बुरहान वानी की मौत को लेकर राजनाथ सिंह का विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बीच कल ही नवाज शरीफ ने एक बार फिर से दोहराया, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है। राजनाथ सिंह के दौरे पर हमारे सहयोगी एहतेशाम उल हक कार्यक्रम में सीधे पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर से शामिल हो रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। एहतेशाम साहब, ये बताइए कि जो ये दौरा है राजनाथ सिंह का, और ये बार बार कहा जा रहा है कि दोनों देशों की द्विपक्षीय मुलाकात नहीं होगी, इसमें कुछ परिवर्तन आया है या बातचीत हो सकती है? और भारत की ओर से ये कहा जा रहा है अगर बातचीत हुई तो वो चरमपंथ का मुद्दा उठाएगा।
देखिए जी, ये राजनाथ साहब जो दाखिला हिंदुस्तान के, ये दोनों देशों के दरमियान जो बढ़ते हुए तनाव है उसके तनाजर में पाकिस्तान आतंक पहुंचे थे, और जिस तरीके से पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि जो मुजाहरे हो रहे हैं उसको सामने रखते हुए आमतौर पर यही कहा जा रहा है, और अब तक की खबरें यही है कि दोनों अगले दाखिला जो है ना उनकी बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, और प्राइम मिनिस्टर से भी मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि कोई फिक्स नहीं किया गया एजेंडा, और बाजार नहीं लग रहा कि उनकी मीटिंग होगी। तो ये सब कुछ देखते हुए अखबार जो है उन्होंने तो बहुत ज्यादा जो तस्वीर की है, मशीन बॉम्ब बड़ा सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, मेरे सामने पड़ा है, उसकी लीड है राजनाथ अराइज का साथ मीटिंग अब एक प्रोटेक्ट। तो दूसरा उर्दू का अखबार है, बड़ा अखबार है जी दुनिया, ये लिख रहा है कश्मीरों के कातिल वापस जाओ, राजनाथ की आमद के खिलाफ मुलगीर मजारे, और साथ ये भी खबर दे रहे हैं कि भारतीय वजीर दाखिला की वजीर आजम ना वजीर दाखिला से मुलाकात होगी। राजनाथ सिंह ने सार्क इजलास में पाकिस्तान से तनकीद की तो सख्त जवाब मिल सकता है। तरह पाकिस्तान अंदर इस्लामाबाद से अखबार में कहता है, कहता है पीएम के सेस कोऑपरेशन अमंग मेंबर करके, तो बजाय तो लगता है जी ये सार्क की मीटिंग है, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि दिसंबर में पिछले साल मोदी प्राइम मिनिस्टर जाना ने विजिट किया था सरप्राइज के बाद तल्लुकात आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत ज्यादा तनाव तनाजर नजर आ रहा है, और उसमें लगता है कि कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं होगी अनलेस के कोई इंटरवेंशन अमरीका की तरफ से या और की तरफ से हो।
जी, तो आज दोनों देशों के बीच की मीटिंग तो होनी है ना?
देखिए जी, मीटिंग इस सेंस में कोई नहीं है, दूर कोई मीटिंग नहीं है कि कोई
बायलेटरल मीटिंग नहीं है, बायलेटरल मीटिंग नहीं है,
बायलेटरल कोई मीटिंग नहीं।
जी, बहुत 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 शुक्रिया सीधे पाकिस्तान से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एहतेशाम हुल्लक साहब आपका। और यहीं पर हम हिंदुस्तान की खबरों का जिक्र करेंगे, मेरे साथ मानसी मौजूद हैं। मानसी, ये बात हम जानते हैं कि आज जो भारत के सारे अखबार हैं वो GST की ही चर्चा कर रहे होंगे, क्या ये बात सही है?
जी, इस खबर को द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है। द इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की तस्वीर है और लिखा है GST। द ट्रिब्यून ने लिखा है, एक देश एक टैक्स के कानून ने राज्यसभा की रुकावट को पार कर लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने पहले पन्ने पर रेस्तरां के बिल और मोबाइल बिल पर इसके असर को समझाया है। लेकिन कोलकाता से छपने वाले दी टेलीग्राफ ने तो कमाल कर दिया है, अखबार ने GST को पहले पन्ने पर सबसे नीचे जगह दी है। दिन की दो बड़ी दुर्घटनाओं, भारत से उड़ान भर रहे एमिरात एयरलाइंस के विमान की दुबई में क्रैश लैंडिंग और महाराष्ट्र में मुंबई गोवा राजपथ पर पुल के गिरने की खबर को पहले पन्ने पर ऊपर जगह दी गई है।
इसके अलावा और कौन सी खबरों का जिक्र है?
द इंडियन एक्सप्रेस ने भारत प्रशासित कश्मीर से एक खबर छापी है जिसमें कहा गया है कि श्रीनगर के SMHS अस्पताल के नजदीक पेलेट गन के छर्रों से हुए जख्मों के कारण 21 साल के एक युवक रियाज अहमद शाह की मौत हो गई है। रियाज के भाई का आरोप है कि उनके शरीर के भीतर 360 छर्रे मिले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में छपी एक खबर के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ब्रिटेन में आयोजित 3 दिवसीय संस्कृति महाशिविर में कहा है कि भारत में अलग अलग पहचान के लोग रहते हैं और यह देश के लिए कोई समस्या नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व सभी को जोड़ने वाला धर्म है और भारत में किसी को भी विदेशी की तरह नहीं देखा जाता। द ट्रिब्यून में छपी एक खबर के अनुसार कैथल के करोड़ा गांव में रहने वाली 80 साल की सुनहरी देवी के पति रामदिया को अदालत ने निर्देश किया है कि वे उन्हें गुजारे के लिए हर महीने 6,000 रुपए दें। अदालत ने घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत उनके पति को कहा है कि वो सुनहरी देवी को घर का एक हिस्सा भी दे ताकि वो इज्जत से अपना जीवन गुजार सकें।
जनसत्ता की एक खबर का जिक्र करना चाहूंगा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर देना पड़ेगा 10,000 का जुर्माना और कैबिनेट ने दी मोटर यान संशोधन विधेयक को मंजूरी। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी दास। कार्यक्रम में आगे उत्तर प्रदेश की खबर का जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक दलित व्यक्ति की कथित तौर पर कुछ लोगों की लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डालने की घटना सामने आई है। मृत व्यक्ति अपने बेटे को उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहा था जो उससे मारपीट कर रहे थे। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जबकि 2 अन्य की गिरफ्तारी बाकी है। पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
राजधानी लखनऊ से लगे हुए बहराइच जिले में मंगलवार की शाम को ये घटना हुई। पुलिस अधीक्षक शालिग्राम वर्मा ने BBC को बताया कि मामूली कहा सुनी बाद में हिंसक घटना में तब्दील हो गई।
ये मोती नाम का आदमी है और दरअसल ये इसको लाठी मारा और इसका नाम है श्रीराम मिश्रा, तो दबंग टाइप का आदमी है। एक लड़के के साथ जो है किसी दुकान के सामने खड़ा था, यहाँ पे वो खड़े हुआ और क्या है उसी पे जो है उसको झगड़ा कर रहा था, उसे मारपीटाई कर रहा था। इस बीच में उसका बाप आकर के बीच भराव किया और उसने आकर के लाठी उठा करके मार दिया। इसके बाद सर पे मारा, लाठी पैर पे मारा, घायल हो गया। इनको 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में लाया गया जहाँ इनकी डेथ हो गई।
SP का कहना था कि शिवराम मिश्र दबंग किस्म का व्यक्ति है और घटना के वक्त वो नशे में था। बीच बचाव करने के लिए मोती के पिता वहां पहुंच गए लेकिन शिवराम मिश्र और उनके साथियों ने मोती के पिता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया जहां देर रात उनकी मौत हो गई। हालांकि ऐसी खबरें भी आ रही थीं कि मोती को चबूतरे पर अपने पास न बैठने देने को लेकर विवाद हुआ था लेकिन पुलिस अधीक्षक ने इस बात से इंकार किया है।
ऐसा कुछ नहीं है, एक बाजार है चौराहा टाइप का है तो वहां दुकान पे खड़े थे, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ।
घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश था। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है क्योंकि मुख्य अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी हो गई है। SP शालिग्राम वर्मा के मुताबिक 2 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है लेकिन अभी हत्या में उनके शामिल होने की जांच की जा रही है। इससे पहले पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के ही मैनपुरी जिले में भी एक दलित दंपति की एक व्यक्ति ने महज 15 रुपए के लिए कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी थी।
समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट। बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में मशहूर बिहार के बोधगया में आजकल होटल एसोसिएशन के लोग परेशान हैं। परेशानी की वजह है विदेशी मठ। होटल एसोसिएशन का आरोप है कि विदेशी मठ धर्म की आड़ में होटल का कारोबार कर रहे हैं। उनके इस आरोप पर हुई प्रशासनिक जांच में कुछ हद तक सही भी पाया गया है। पूरा ब्यौरा सुनिए पटना से सीटू तिवारी से।
बिहार में हर साल लाखों पर्यटक बोधगया आते हैं। ऐसे में पर्यटकों की ये आमद यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा साधन है, खास तौर पर होटल कारोबार के लिए। लेकिन बीते कुछ सालों से होटल कारोबारी परेशान हैं। होटल कारोबारियों का आरोप है कि विदेशी मठों ने अपने अपने मठ के अंदर अवैध तरीके से होटल और अतिथिशाला खोल लिए हैं। बोधगया होटल एसोसिएशन के महासचिव सुदामा प्रसाद ने BBC से हुई फोन पर बातचीत में कहा,
तो यहाँ पे नगर पंचायत से 10 कमरे बनाने की, इन्होंने आज की तारीख में 300 कमरे 400 कमरे इस तरह से इन्होंने बना रखे हैं और बिल्कुल ही लग्जरियस, बिल्कुल विलासपूर्ण इनके कमरे हैं और ये एकोमोडेशन देते हैं बिल्कुल हम लोग होटलों की तरह।
बता दें बोधगया में आधिकारिक रूप से 55 विदेशी मठ हैं। बोधगया होटल एसोसिएशन कई सालों से आरोप लगाती रही है कि धर्म के आड़ में ये मठ अपनी जगहों का व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्डिंग बायलॉस का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बीती 1 जुलाई को प्रशासनिक अमले की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसके बाद गया के जिलाधिकारी कुमार रवि ने जांच के आदेश दिए। अभी तक 3 विदेशी मठों की जांच की गई है जिसमें मठों स्थानों के व्यावसायिक इस्तेमाल, आने जाने वाले पर्यटकों का ठीक से ब्यौरा नहीं रखने की बात सामने आई है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया,
इंक्वायरी हुई थी, दो तीन दिन की हुई थी, उन लोग ने कुछ कुछ कमर्शियल एक्टिविटी पाई गई थी और वो जगह पर जो है पेपर वगैरह जो प्रोड्यूस किए जाने थे वो कुछ जगह पर नहीं करी गई थी, तो उसी के बाद बात आई कि उन लोकल मस्कों को फॉलो करना चाहिए।
इस बीच विदेशी मठों से जुड़े लोगों का तर्क ये है कि कुछ मठ ही अपनी जगह का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में सभी मठों पर आरोप लगाना गलत है।
होटल एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि मोनेस्ट्री ऐसा कर रहे हैं, मोनेस्ट्री वाले को कहना है कि कुछ ही मोनेस्ट्री ऐसा कर रही है, इसे सभी को पेंट नहीं किया जाए उस कलर से, जो भी कर रहे हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होनी है उसको किया जाए।
ये थे गया के जिलाधिकारी कुमार रवि के शब्द। बता दें बोधगया में 150 होटल, रिजॉर्ट और अतिथिशाला है। बोधगया होटल एसोसिएशन की माने तो मठों के व्यवसायिक इस्तेमाल से इस कारोबार में होने वाली आय में 70% की कमी आई है। एसोसिएशन के सुदामा प्रसाद कहते हैं,
ये आज के तारीख में इतना ज्यादा देवाधिकार लिया कि हम होटल वालों के लिए यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया। हमारा बिजनेस जो है बिल्कुल आज 70% हमारा डाउन हो गया, ये जो है अपने यहाँ सारे टूरिस्ट को एक विजिट कर लेते हैं और हमारा जो है होटल व्यवसाय बिल्कुल ही आज निरुत्साह हो गया, बिल्कुल हम लोग जो है आज
दोषी पाए गए 3 मठों को प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। विदेशी मठों के साथ साथ स्थानीय होटल, रिजॉर्ट और अतिथिशालाओं की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि बोधगया की होटल रिजॉर्ट इंडस्ट्री विश्व भर में श्राद्ध कर्म के लिए प्रसिद्ध फल्गु नदी पर अतिक्रमण को लेकर भी खबरों में आती रही है। सीटू तिवारी, BBC पटना।
और अभी अभी ये खबर लंदन से आ रही है कि केंद्रीय लंदन के रसेल स्क्वायर में चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकू के हमले में 1 महिला की मौत हुई है, 5 घायल हैं। पुलिस इस मामले में चरमपंथी साजिश की संभावना की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। इस घटना के बारे में और ब्यौरे की अभी प्रतीक्षा है। कार्यक्रम में अब बात करेंगे खेल की खबरों की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। मैच के चौथे दिन के स्कोर 4 विकेट पर 48 रन से आगे खेलते हुए वेस्टइंडीज के रॉस्टन चेज और ब्लैकवुड मैदान में उतरे और जब खेल 25 ओवर तक पहुंचा 100 रन बना लिए। हालांकि उम्मीद कम थी लेकिन भारत और वेस्टइंडीज ने इस मैच को ड्रॉ करा लिया। बाकी की खबरें रजत चांदना से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ रजत चांदना। उधर फैफ डुप्लेसी चोटिल एबी डिविलियर्स की जगह न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। कैरिबियाई प्रीमियर लीग में खेलने के दौरान डिविलियर्स की कोहनी में चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो लगभग 6 हफ्ते तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तेज गेंदबाज मौनी मोकल भी पीठ में चोट के कारण 4 से 6 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं। उनके साथ ही तेज गेंदबाज डेल स्टेन और वर्नन फ्लेंडर को हालांकि 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट डर्बन में 19 अगस्त से शुरू होगा जबकि दूसरा टेस्ट सेंचुरियन में 27 अगस्त से खेला जाएगा। उधर राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी से क्लीन चिट मिलने के बाद नरसिंह यादव को आज यूनाइटेड विश्व कुश्ती से भी रियो ओलंपिक में भाग लेने की इजाजत मिल गई है। नाडा ने सोमवार को नरसिंह को बेकसूर ठहराया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, नरसिंह को नाडा से क्लीन चिट मिलने के तुरंत बाद हमने विश्व इकाई को पत्र लिखकर उसके नाम पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। मुझे आज ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड विश्व कुश्ती का जवाब आ गया है जिसने नरसिंह को रियो ओलंपिक में खेलने की अनुमति दे दी है। वहीं रियो ओलंपिक से पहले भारत का डोप शर्मिंदगी का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा और अब ऐसे संकेत है कि 200 मीटर के धावक धर्मवीर सिंह प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी पाए गए हैं। ओलंपिक में 36 साल बाद क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले पुरुष फर्राट धावक बने धर्मवीर ने कल रात रियो की फ्लाइट नहीं ली। ऐसी अटकलें हैं कि 11 जुलाई को बेंगलुरु में इंडियन ग्रां प्री मीट के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा लिए गए उनके ए नमूने में एनाबॉलिक स्टेरॉयड पाया गया है। हालांकि नाडा या भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। और अपनी बाइक लाई में चोट के बावजूद टेनिस स्टार राफेल नडाल रियो ओलंपिक में सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स में भाग लेंगे। नडाल ने चोट के कारण फ्रेंच ओपन तीसरे दौर में छोड़ने के बाद से ही नहीं खेला है। यही नहीं, वो विंबलडन से भी बाहर रहे। 14 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीत चुके राफेल नडाल ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्ड जीता था लेकिन घुटने की चोट के कारण वो लंदन ओलंपिक से बाहर रहे थे।
और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
अभी अभी खबर आ रही है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शहर के बीचों बीच एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया है, जिसके कारण एक महिला की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने रसल स्क्वायर में एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान चरमपंथ की आशंका पर भी विचार हो रहा है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिलने वाली राशि में से $30 करोड़ पर रोक लगा दी है। राज्यसभा ने जीएसटी यानी वस्तु कर एवं सेवा कर बिल के लिए लाए गए संविधान संशोधन बिल को पास कर दिया है।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। विश्व भारती लेकर फिर उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।